ओम शांति। आज मैं अभी हम आपके सामने अदिति देवी का जो उनके विस्तार से शॉर्ट में ही उनका परिचय दे रहे हैं। प्रेजेंटली दीदी जो है राजयोगा टीचर हैं एंड स्पोक पर्सन है मल्टीमीडिया के इन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान और हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं स्पोर्ट्स विंग के और प्रैक्टिसिंग एंड बेस्टोइंग स्पिरिचुअल नॉलेज एंड राजयोगा इन ब्रह्मा कुमारीज लास्ट 25 ईयर्स से वो राजयोगा का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उनकी एजुकेशन एमएससी इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम हिसार एंड बीएससी मेडिकल फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। प्रोफेशनली शी इज अ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर इन अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट एंड आईईसी कंसल्टेंट भी रहे हैं दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। उनके बहुत सारे मैनी स्पिरिचुअल टॉक्स आते हैं, शोज आते हैं, टेलीकास्ट होते हैं पीस ऑफ माइंड चैनल में, प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स पे लाइक दिव्या टीवी, दिशा टीवी एंड कात्यायनी टीवी एंड सूर्या टीवी, ऑल इंडिया रेडियो और ईटीवी पर भी इनके प्रसारित हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया में भी सेवाएं दी हैं। जी न्यूज में एज ए रिपोर्टर उन्होंने कार्य किया है, दैनिक भास्कर में एज ए जर्नलिस्ट एंड प्रोग्राम प्रेजेंटेटर रहे हैं वो ऑल इंडिया रेडियो में, स्क्रिप्ट राइटर इन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रोडक्शन सेंटर में। और उनके जो सेवाएं हैं उसके अलावा मैं बताती हूँ, ऑनर्ड बाय स्पोर्ट्स इंडिया फाउंडेशन इन आयुष मिनिस्ट्री, नमो गंगे फाउंडेशन ये इनको ऑनर्ड प्राप्त हुए हैं। ऑनर्ड बाय मैनी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लाइक नवकार वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आप लोग बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं, हम सुनते हैं। दीदी की एक तो विशेषता है बहुत स्वीट वॉइस और दूसरा कामनेस, और उनका टॉपिक भी है कामनेस इन अ क्योटिक सिचुएशन, तो आप सुनते हैं, ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच।
ओम शांति। इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, हम एक एक्सरसाइज करते हैं। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, बार खड़े हो जाओ, स्ट्रेच करो बॉडी को, कि बहुत देर तक बैठे रहो ना एक ही जगह पर तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब बैठ जाओ। ओम शांति। ये दुनिया आवाजों से भरी है, एक होता है शोर और एक होता है कि जीवन की परेशानियां, समस्याएं, दिक्कतें, बहुत कुछ जीवन में चल रहा है, परंतु जो कुछ बाहर है वो बाहर ही है और जो हमारे अंदर है वो उस बाहर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। बाहर की बातें, बाहर की समस्याएं, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ हो रहा है, कुछ मेरे अनुसार नहीं हो रहा, सब कुछ कहाँ है? अंदर नहीं है, बाहर है। परंतु मेरे अंदर क्या है? उस शोर से कहीं ज्यादा गहरी शांति है। बाहर की आवाज बहुत क्लियर सुनाई देती है, पर अंदर की शांति उतनी क्लैरिटी से अनुभव नहीं होती है। उसके कारण क्या होता है कि जो बाहर की अशांति है, परेशानी है, वो मेरे अंदर चली जाती है और जो मेरे अंदर की शांति है उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो एक बार हम सभी बिल्कुल अंदर की गहराई से अपने भीतर की छिपी हुई शांति को इमर्ज करेंगे। आज का ये जो सेशन है ये केवल ज्ञान अर्जन करने का नहीं है, अपितु जो हम सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकल अनुभव करने का भी है। वैसे भी ये जो समय है, जो ये टाइम हो गया है, इसे हम नमाज शाम का समय कहते हैं। इस समय जब हम सच्चे दिल से अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर मन को एकाग्र करके जब उस ईश्वर को याद करते हैं तो आपके अंतर की ऊर्जा कई गुणा बन जाती है। तो इस पूरे सेशन के दौरान हम केवल सुनेंगे नहीं, अनुभव भी करेंगे। और इसी गोल के साथ आइए मेरे साथ तीन बार मुख से नहीं, मन से, दिल से अपने अंतर की ऊर्जा को इमर्ज करते हुए हमारे साथ आप सभी भी बोलिए ओ। सभी चाहते तो यही है कि शांत रहे। कई बार रोज सुबह उठते हैं तो अपने आप से प्रॉमिस करते हैं आज मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगी, है ना, कल जो हो गया वैसा नहीं होना चाहिए। पर फिर क्या होता है, कोई आता है, कुछ कह देता है और जाते जाते मेरे होठों की मुस्कुराहट साथ ले जाता है। अच्छे वाले मूड में थे, सही तो चल रहा था, फिर किसी ने कुछ कह दिया आपके बारे में ना, उसने कुछ ऐसा बोला है ना, फिर क्या होता है, उसी समय मूड ऑफ हो जाता है ना। इतनी अच्छी सोच थी मेरी कि मुझे शांत रहना है, लड़ना नहीं है, अच्छा ही तो सोचा था, पता नहीं बैठे बैठे किसी ने कुछ कहा और सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्यों हो जाता है ये सब कुछ, बैठे बैठे ही परिवर्तन हो जाता है। अभी अभी बहुत खुश थे, अभी अभी बहुत दुखी हो जाते हैं। अभी ये तो ही छोटी छोटी बातें, वो आप सोचो अगर कुछ बड़ा हो जाए तो, जब हम छोटी छोटी बातों में इतने अपसेट हो जाते हैं, किसी के कुछ कहने से, कुछ करने से, किसी को मैंने सोचा कि वो ऐसा करेगा उसने उसका उल्टा कर दिया, बस इन छोटी छोटी बातों में इतने अपसेट हो जाते हैं, तो कुछ बड़ी विपदा आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तब हमारे मन का हाल क्या होगा, कोई तैयारी है, सोच कर देखो, अज्यूम, अभी भी वो भाई एग्जाम्पल दे रहे थे कोरोना पीरियड की, कोई तैयार नहीं था, पर बहुत कुछ हो गया, लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई, वातावरण बदल गया, सोच बदल गई, कईयों को तो वैराग्य भी आ गया, बहुत कुछ बदल गया, बस एक थोड़ी सी सिचुएशन बदली जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। वैसे भी जीवन में अचानक से हमारे अपनों के साथ कुछ हो जाता है, हमारे साथ कुछ हो जाता है। कुछ खिलाड़ियों से मेरी बातचीत हो रही थी, बता रहे थे कि तैयारी कर रहे थे, फिर अचानक घर में कुछ ऐसा हो गया, इतना सब कुछ तैयार किया, बस उस एक घटना ने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्यों? फिजिकली तो प्रिपेयर किया, पर मानसिक रूप से अपने आप को तैयार ही नहीं किया था। तो आप सोच के चलो, अगर हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे और आने वाला समय क्या क्या हो सकता है। देख रहे हैं हम, न्यूज़ पढ़ते हैं, दुनिया का हाल क्या है, ऐसा ही कुछ हमारे आसपास हो जाए तो क्या हम इन चीजों के लिए तैयार हैं? है तैयार? कोई तैयारी की है? आज का ये सेशन आपको वो तैयारी करने की टिप्स देगा। तो क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है? क्योंकि अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आपके अपने कैसे तैयार होंगे? कई बार हम सोचते हैं, भले मैं दुखी हो जाऊं, माताएं अक्सर ऐसा करती हैं, मैं भूखी रह जाऊं, ये तो खाना खा ले, ऐसा है ना, खुद एंड में है ना, मैं दुखी रहूं कोई बात नहीं, मेरे बच्चे सुखी रहें। पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं ना बच्चों के लिए, हमें कोई दिक्कत हो जाए क्या हुआ, हम तो बड़े हैं ना, बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर आप सोचो, एक दुखी इंसान दूसरों को सुख दे सकता है? एक अशांत इंसान दूसरों को शांति दे सकता है? पॉसिबल है? जो चीज मेरे पास नहीं है क्या मैं दूसरों को दे सकती हूं? तो तैयारी आपको करनी है। और इसमें भी एक वंडरफुल बात देखो, ऐसा नहीं है कि हम तैयारी करते नहीं हैं, बहुत तैयारी करते हैं, ये बहुत ज्ञानी है हम, कुछ हम सीखते हैं, कुछ दुनिया सिखाती है, कुछ जीवन के अनुभव सिखाते हैं। पर वंडरफुल बात यह है कि जब वो विपदा आती है तो वो ज्ञान काम में ही नहीं आता है। है अनुभव लोगों का? है किसी का अनुभव? नॉलेज होती है, ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं है, परंतु जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में घटना घटित होती है, जैसे यहां पर हम लेसन पढ़ाया सुबह कि हम कौन है, आत्मा है, क्या नहीं है, शरीर नहीं है। फिर भी अगर शरीर छूट जाए या शरीर को कुछ दुख हो जाए तो क्या होगा? उस समय याद आएगा, मैं आत्मा हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं। और ऐसा नहीं ये पहली बार आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है, बचपन से स्कूल में भी गीता सार में और कई बार कैलेंडर्स पर भी पढ़ते थे। वैसे किसी ने गीता ना भी पढ़ी हो पर कई बार ही कैलेंडर्स पर पढ़ी होगी कि आप ये देह नहीं है, आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, देह विनाशी है। कोई नया ज्ञान नहीं है, पर जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है ना तो सारा ज्ञान पड़ा रहता है, काम ही नहीं आता, बाद में याद आता है। होता है ऐसे ना? आपको मैं आप सबके बीच अपने बचपन की एक बचपन कॉलेज लाइफ की एक स्टोरी मुझे याद आती है इसी पर। मैं मेडिकल स्टूडेंट थी तो बाकी मेरी एक कजन थी, वो भी मेडिकल, वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट थी। अब डेफिनेटली साइंस तो पढ़ी होती है तो हमें पता था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और वैसे भी लोगों को नॉलेज दी जाती है। पर हुआ क्या, घटना बताती हूँ, मजेदार घटना है। हम सर्दियों की रात्रि थी दिल्ली के अंदर, मैं उसके घर पे उसका टेरेस पर रूम बना था मेरी कजन का, उसके घर पर हम सो रहे थे। वंडरफुल स्थिति ये थी कि सर्दियां थी, हम दोनों ने सोचा कि ठंड है तो बीच में हीटर जलाकर एक बड़ी सी अच्छी सी शनील की रजाई ओढ़कर दोनों सो रहे थे और बीच में हीटर रखा था। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रही हूं। हुआ ये कि सो रहे थे, अचानक से मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। मैंने आंखें खोली, देखा मेरे सामने आग थी। वो जो ओढ़कर बैठे थे रजाई शनील की, उस पर आग लग चुकी थी और इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। मेरी जो कजन थी, मैंने उसको उठाया, मैंने कहा प्रियंका उठो, देखो आग लग गई है। और आप दोनों, हम साइंस के स्टूडेंट थे, सोचा क्या करें, अभी सामने जैसे मौत खड़ी थी। तो जो हीटर का उसका स्विच तो मैंने ऑफ करा, ऊपर एसी भी लगा हुआ था, थोड़ी सी आग की लपट ऊपर जाती तो आज मैं यहां नहीं होती। आप सोचो, हम दोनों की बुद्धि, पढ़े लिखे हैं दोनों, साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने उठाई वो रजाई कोने से और उसको बाहर फेंक दिया कमरे के। हवा चल रही थी, ठंडी हवा, और उस रजाई को इतनी तेज और लपटे हुई, और आसपास और भी चीजें थी, जल सकती थी। बुद्धि काम नहीं की, उस पर पानी डालना चाहिए, और हमने बाहर हवा में फेंक दिया। और आग को हवा मिल जाए तो और फैल जाती है ना। थोड़ी देर के बाद होश आया और हम दोनों ने बाल्टियां उठाकर उस पर डाली। आप सोचो, प्रैक्टिकल बात है, हम सब भी तैयारी करते हैं, कई चीजों की तैयारी करते हैं लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है, हम सभी बुद्धिमान हैं, ज्ञानियां हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तैयारी करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, परंतु वो ज्ञान, जैसे हमें पता है कि जब क्योटिक सिचुएशन हो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, तो शांत रहना चाहिए। कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख, नई कहावत नहीं है, पर फिर क्या होता है, जब सिचुएशन आती है तो चुप रहते हैं, है ना, फिर क्या होता है, सुखी की जगह क्या हो जाते हैं, डेफिनेटली चुप नहीं रहे तो दुखी तो होंगे ना। ज्ञान है, ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं है, करना क्या चाहिए। कई बार हम भी कहते हैं, थोड़ा रुक जाती ना तो काम हो जाता था, थोड़ा चुप हो जाती तो सिचुएशन ठीक हो जाती थी, थोड़ा सह लेती तो बात बन जाती थी, थोड़ा सुन लेती तो, थोड़ा रुक जाती तो। धैर्यता, सहनशीलता, पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पर जब अप्लाई करने की बात आती है तो। अब हम भी आपको कहेंगे, अच्छा काम रहना चाहिए जब क्योटिक सिचुएशन हो, है ना। अब कहने से बात थोड़ा ना बनती है, करना पड़ता है ना। जो भी ज्ञान है हमने बचपन में अर्जन किया, वो थ्योरी थी। जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है तो पहले प्रैक्टिस काम आती है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। एक बहुत वंडरफुल स्टोरी आपको सुनाती हूँ, सुनेंगे सभी? ओके। एक बार जापान की बात है, एक मॉन्क था, तो उसका एक डिसाइपल था, उसको बहुत मानता था, बहुत अच्छा मॉन्क था, अच्छी अच्छी ज्ञान देता था। तो जो डिसाइपल है वो मॉन्क के पास गया और कहा कि, जैसे हमारे यहाँ गुरुजी के पास जाते हैं ना, तो कहते हैं कि आप एक दिन हमारे घर जरूर पधारे। तो उन्हें कहा, जरूर पधारूंगा, आप कह रहे हो तो। क्या ठीक है। तो एक दिन उनके जो मॉन्क थे उनके घर पर पधारे। उस डिसाइपल का जो घर था जापान के अंदर, एक बिल्डिंग की सातवीं फ्लोर के ऊपर था। सातवीं फ्लोर की छत के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ सत्संग चलता है वैसे, वहां पर भी बहुत सारे डिसाइपल्स बैठे थे, सत्संग चल रहा था और मॉन्क अपना ज्ञान सुना रहे थे। तो आपको पता है जापान में अर्थक्वेक बहुत आते हैं ना। वो सुना रहे थे ज्ञान, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, धरती हिली, वो सातवीं फ्लोर पर थे तो आप समझो और ज्यादा हिले होंगे। सब लोग घबरा गए, ज्ञान तो वहीं छोड़ो और भागे जान बचा के। सातवीं से छठी, छठी से पांचवी, चौथी, दौड़ते गए सारे। जो डिसाइपल था वो भी दौड़ा। जब वो चौथी फ्लोर पर आया तो उसके आगे एक बहुत बड़ा दरवाजा आ गया, वो आगे बढ़ ही ना पाए। और तब उसकी बुद्धि में आया कि सब लोग भागे, हमारे मॉन्क भागे कि नहीं, ऐसा तो नहीं ऊपर रह गए। अब वो आगे तो जा नहीं सकता था, ऊपर गया चेक करने के लिए कि मैंने बुलाया था, मेरी जिम्मेवारी थी तो मुझे जाके चेक करना चाहिए। ऊपर गया तो उसने देखा कि वो जो मॉन्क थे ना, बहुत ही शांत चित स्थिति में, एकदम समाधि में आंखें बंद करके बैठे हुए थे ध्यान में। उसने कहा कि भाई उठाता हूं इन्हें कि अर्थक्वेक आया है, जान बचेगी तो और तपस्या कर लेंगे। तो उठाने गया, परंतु उनके आसपास की जो शांति थी वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि वो उन्हें हिला नहीं पाया, हाथ नहीं लगा पाया। और थोड़ी देर के बाद अर्थक्वेक बंद हो गया। जो मॉन्क था उसने दोनों आंखें खोली, आंखें खोलकर अपने डिसाइपल को सामने देखा और जहां से वो ज्ञान खत्म किया था वहीं से दोबारा शुरू करने लगे। तो डिसाइपल ने कहा कि गुरुजी कि आप बहुत अच्छा सुना रहे थे, पर आप जो भी सुनाया ना ये अर्थक्वेक के अंदर हम सब भूल गए। अभी आप हमें ये बताओ, इतनी तेज अर्थक्वेक आया, सब लोग भागे, आप क्यों नहीं भागे? जान तो सबको प्यारी है ना, जीते रहेंगे तो ज्ञान देते भी रहेंगे, ज्ञान लेते भी रहेंगे, आप क्यों नहीं भागे? तो मोंक मुस्कुराए और उसने कहा, बहुत सुंदर जवाब, किसने कहा मैं नहीं भागा? कहा मैं भागा, तुम बाहर की ओर भागे, मैं अंदर की ओर भागा। तुम भी बाहर, उसने कहा, तुम भी बाहर एक ऐसा स्थान तलाश कर रहे थे जहां आपकी बॉडी सुरक्षित रहे, आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। मैं भी अपने भीतर एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा था जहां मेरा मन विचलित ना हो, जहां बाहर की बातों का प्रभाव मेरे अंतर मन पर ना पड़े। और क्या आपको पता है, मैं तुरंत उस स्थान पर पहुंच गया और मेरा मन शांत हो गया। तुमने कहा, पता है आपको मैं ऐसा क्यों कर पाया? जानते हो क्यों? क्योंकि मैं रोज अंदर जाने की और बाहर आने की प्रैक्टिस करता हूं, अंदर जाने की और बाहर आने की प्रैक्टिस करता हूं। तो क्या आप ये प्रैक्टिस करते हो? अगर प्रैक्टिस नहीं है तो बाहर की चीजें आपके अंदर चली जाएंगी, और अगर प्रैक्टिस है तो आपके अंदर की स्थिति बाहर की परिस्थिति को बदल देगी। बाहर सब कुछ चेक करो, हर पल बदल रहा है। अभी अभी दिन था, अभी अभी शाम से रात होने आ रही है, अभी अभी सूरज था, अभी अभी चांद निकलने वाला है, अभी अभी तो रूम में थे फिर रास्ते में आ गए, अब यहां बैठे हो। हर पल हर वक्त हम बदलते जा रहे हैं, सिचुएशन बदलते जा रही है। अभी जो बाहर का बदलाव है मेरे अंदर को बदल रहा है या नहीं बदल रहा, ये मुझे चेक करना है। केओस बाहर है, काम अंदर है। तो ये जो बाहर का केओस है, बाहर की विचलित करने वाली बातें हैं, परिस्थितियां हैं, ये मेरे अंदर को प्रभावित कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो एक काम करते हैं, एक चेकिंग करें हम अपनी, चलो मिलकर एक चेकिंग करते हैं अपने अंतर की, कि बाहर की परिस्थितियां मुझ पर हावी हैं या मेरी परिस्थितियां बाहर की सिचुएशन पर हावी हैं। चलो एक प्रैक्टिस करें 2 मिनट के लिए, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, एकदम शांत, हल्का छोड़ें, बिल्कुल हल्का। ये दुनिया आवाजों से भरी है, इस दुनिया में हर पल बदल रहा है। अभी अभी सुबह थी, अभी रात होने वाली है, अभी अभी सो रहा था, अभी चांद आने वाला है, मैं भी कुछ समय पहले अपने रूम में थी, फिर रास्ते में आई, अब यहां बैठी हूं। सब कुछ पल पल बदल रहा है, पर मैं मस्तक के मध्य चमकती हुई आत्मा, मैं अपने स्थान पर चमक रही हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, महसूस करें भीतर की शांति को, अंतर की शक्ति को, अब चेक करें बाह्य बातों का प्रभाव मेरे भीतर की शांति को विचलित तो नहीं कर रहा। बाह्य कर्मों का प्रभाव मेरे भीतर के सुख को दुख में बदल तो नहीं रहा। महसूस करें ये बातें, ये परिस्थितियां बाहर है, अलग है, स्थूल है, परिवर्तनशील है, और मैं सत्य हूं, शक्तिशाली हूं, चेतन हूं, शांत हूं। मेरे अंतर का प्रभाव अब बाहर महसूस करें, जैसे कोई बल्ब जल जाता है तो चारों ओर रोशनी कर देता है, बिल्कुल ऐसे। ये स्मृति कि मैं शांत हूं, मैं शक्ति हूं, मेरे बाहर की परिस्थिति को, समस्याओं को परेशानी के काले बादलों को शक्ति में, समाधान में, शांति में परिवर्तन कर रही है। फील करें अंतर का प्रभाव बाहर पर। ओम शांति। ये प्रैक्टिस अंदर जाने की और अंदर से बाहर आने की हमें रोज करनी है, ताकि बाहर कुछ भी होता रहे उसका इफेक्ट मेरे अंदर की परफेक्ट स्टेज को डिफेक्ट में ना बदल दे। भारत देश में चाहे खिलाड़ी हैं, दुनिया में जो स्पोर्ट्स पर्सन है, परंतु जो चाहे जीवन के खिलाड़ी हैं, वो हम सब हैं, सब खेल रहे हैं ना। रोज हर्डल्स आते हैं, रोज एक एग्जाम आता है, अनेक परीक्षाओं से इंसान को गुजरना पड़ता है और उसके लिए हम प्रेपरेशंस करते हैं। पर अगर बच्चा प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं, देखा होगा ना, हमारे साथ भी होगा, पर एग्जाम से डर जाते हैं। एग्जाम आने वाला है, वो जो डर है ना, वो सारी प्रिपरेशन को जीरो कर देता है। अभी थोड़े दिन पहले हम पुणे में गए, तो वहां पर एक बच्ची जो है ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रही थी, उसके कोच का फोन आया। मैं नहीं जानती थी, पर हम पुणे में ही थे, तो हमारे किसी कांटेक्ट से उसका, उनके कोच का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो जाना नहीं चाहती है। मैं 5 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अभी एंड मोमेंट पर कहती है मैं नहीं जाना चाहती हूं, मैं नहीं कर सकती हूं कम्पीट, इसको कुछ करो। आप मानोगे, हमने 3 मिनट जैसे अभी मेडिटेशन कराया, ऐसे एक अलग टेक्निक से उसे विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, केवल 3 या 4 मिनट मोबाइल पर ऑनलाइन कराई, विचार बदल गए, सोच बदल गई। केवल 3 मिनट सोच की तो बात है। बाहर से अंदर जा रही है नकारात्मक ऊर्जा, या अंदर से बाहर जा रही है सकारात्मक ऊर्जा? बाहर की परिस्थिति यानी पराई स्थिति, फुल फॉर्म समझ लो, पराई है, आपकी नहीं है। परिस्थिति यानी पराई स्थिति, आपकी नहीं है। तो परिस्थिति मेरी स्वस्थिति पर हावी है, या स्वस्थिति परिस्थिति पर हावी है, ये चेक करना है। एक बात याद रखें, चेतन का प्रभाव जड़ पर पड़ता है, जड़ का प्रभाव चेतन पर नहीं पड़ता है। हम मंदिर में पूजा करते हैं ना, वहां मूर्ति जो होती है जड़ होती है, पर उसको जब स्थापित किया जाता है तो प्राण प्रत्यक्षता की जाती है ना, प्रतिष्ठा की जाती है वहां पर। कौन करता है? एक मनुष्य आत्मा करती है मंत्रोच्चारण से। हम जब एकाग्रचित होकर, मंत्र यानी मन को नियंत्रित होकर जो वाक्य उच्चारित किए जाते हैं कंट्रोलिंग माइंड से, एकाग्रचित होकर जो भी वचन उच्चारित किए जाते हैं उससे जड़ मूर्ति के अंदर भी प्राण आ जाते हैं और वो अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ताकत किसमें है? मूर्ति में नहीं है, किसमें है? आपके अंतर की शक्ति में है और उसके आधार पर आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जितनी भावनाएं तक पहुंचती जाती है मनुष्य आत्मा की उतनी उसकी मान्यता बढ़ती जाती है। तो उसमें जड़ मूर्ति में प्राण फूंकने वाली मनुष्य आत्मा ही है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ना, ये जो व्यर्थ की बातें हैं, इनमें ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जब बार 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 उसके बारे में सोचते जाते हो, उसमें प्राण प्रत्यक्षता करते जाते हो, तो परिस्थिति बड़ी हो जाती है और आप छोटे हो जाते हो। उसको बड़ा किसने किया? आपने किया। परिस्थितियों को पकड़ के रखते हो, बातों को पकड़ के रखते हो, तो चीजें जाती नहीं है, सिचुएशंस को ओवरलैप नहीं कर पाते हो। इस पर एक बहुत वंडरफुल कहानी भागवत में सुनाते हैं, सुनिए किसी ने, श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि कैसे जड़ के अंदर प्राण प्रत्यक्षता कर दी जाती है और इंसान जो है अपने व्यर्थ संकल्पों के जाल में खुद ही फंसता जाता है। एक बार क्या हुआ, सुनेंगे सभी स्टोरी? हाँ, क्योंकि क्या होता है, बातें याद नहीं रहती, कहानियां याद रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनके एक फ्रेंड सात्यकी, तीनों जंगल से जा रहे थे। जंगल से जा रहे थे तो रात हो गई। अब उस समय तो कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं, आजकल तो सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल है, टॉर्च है, वो सब कुछ है, वहां पर उस समय तो ऐसा था नहीं। स्टोरी है, स्टोरीज कुछ सिखाती हैं, है ना? तो ये कथाएं हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा जाते हैं। तो जा रहे थे, अंधेरा हो गया, तो सबने सोचा अब अंधेरा हो गया क्या करें, हम रात को यहीं ठहर जाते हैं, सुबह जब उजाला होगा रास्ता नजर आएगा फिर जंगल क्रॉस कर लेंगे। तो जंगल है, जानवर है, और जैसे कहानियों में बताते उस समय तो कहते दानव थे, राक्षस थे, ऐसे ऐसे आ जाते थे। सबने एक डिसीजन लिया कि दो व्यक्ति सो जाएंगे और एक जना पहरा देगा। तो ऐसे किया, ड्यूटी लगा ली कि पहले श्री कृष्ण जी और बलराम जी जो हैं वो सो जाएंगे और सात्यकी पहरा देंगे दो घंटे तक, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे। तो हुआ ये कि श्री कृष्ण जी और बलराम जी सो रहे थे, सात्यकी पहरा दे रहे थे और सामने एक बहुत सुंदर झील थी। उस झील में से अचानक से एक राक्षस निकल कर आया और उसने कहा, क्या कहता है कि आज तो बहुत अच्छा खाना मिल गया, 3-3 मानव मिल गए, अब मैं इनको खा जाऊंगा। वो आगे बढ़ा, सात्यकी ने कहा ऐसे कैसे खा जाओगे, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। सबने देखा माइथोलॉजिकल सीरियल है ना, तो युद्ध हो गया शुरू। अब वंडरफुल बात थी उस युद्ध की कि वो जितना उससे लड़ता जाए उतना वो राक्षस बढ़ता जाए, उसका साइज इंक्रीज होता जाए। 2 घंटे हो गए, सात्यकी तो थक कर ढेर हो गया और उसका साइज तो बढ़ता ही जाए। अब 2 घंटे पूरे हो गए, ड्यूटी खत्म, उसने बलराम को उठाया, भाई उठो, ये राक्षस कहता है खा जाऊंगा। बलराम ने कहा तुम सो जाओ, चिंता नहीं करो, मैं हरा दूंगा। अब युद्ध शुरू हुई बलराम की और उस राक्षस की, अब फिर वही सिचुएशन हो गई, वो जितना लड़ता जाए उतना राक्षस बढ़ता जाए। अब वो युद्ध जो शुरू हुई थे, 2 घंटे हो गए, अब किसकी टर्न थी? कृष्ण जी की। अब दोनों ने कहा कि भाई देख लो, हमारे बस का तो नहीं है। तो ने कहा तुम सो जाओ, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं है। वो दोनों सो गए, श्री कृष्ण जी ने उठाई अपनी, क्या उठाई? अपनी बांसुरी। एक छोटा सा टीला था वहीं पर, वहां जाके बांसुरी बजाने लगे। वो राक्षस आया, गरजने लगा, खा जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे ऐसे बोलने लगा। श्री कृष्ण ने कोई रिएक्ट नहीं किया। इसे कहते हैं कामनेस इन क्योटिक सिचुएशन। कुछ रिएक्शन नहीं दिया और अपना चैन की बंसुरी बजाते रहे। अब वो बजाते जाए और उसका साइज छोटा होता जाए, और छोटा और छोटा और छोटा, इतना सा हो गया। फिर उसने उसको उठाया, अपनी पोटली में डाला और रख दिया। अब वो दोनों उठे, पूछा भाई राक्षस कहाँ गया? कौन सा राक्षस? कहते वही वो जो कह रहा था खा जाऊंगा और बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी पोटली खोली और दिखाया ये है। अब इस सिचुएशन के अंदर हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल गई। ये जो राक्षस है ना, ये क्या है? हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, है ना, जिनके बारे में आप अक्सर, पता है क्या हो गया मेरे साथ, ये जो बातें हैं जिनको हम बहुत महत्व देते हैं ना, दिखाई नहीं देती हैं बातें, पर हम उसको राई को पहाड़ बना देते हैं। क्योंकि बातों के बारे में जब हम बातें करने शुरू करते हैं ना, बात तो एक बात हुई, मैंने आपको कुछ कह दिया, भाई साहब आप ऐसे हो, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, मैंने कहा नहीं आपने ना ये गड़बड़ कर दी, वो जो इतनों ने कहा आपने बहुत अच्छा किया वो सब जीरो, आपको मेरी बात अंदर तक समा जाएगी और उस बात के बारे में आप सोचते जाओगे, सोचते जा रहे हो, आपके मन की सिचुएशन डिस्टर्ब होती जा रही है, वो राक्षस बढ़ता जा रहा है। फिर किसी से बात करोगे फोन पे, सामने ऐसे करती ना माताएं, किसी ने कुछ कह दिया पहले सोचेंगी, मनन करेंगी, मंथन करेंगी। हम कई बार मैं आता हूँ कहते ज्ञान का मंथन करो, जो भगवान ज्ञान सुनाते हैं ना उसके बारे में सोचो, अच्छी बातों के बारे में। तो कहते मनन नहीं होता है, पर कोई बात कुछ कह दे उसके ऊपर इतना मनन मंथन होता है, होता है ना, कोई कुछ कह दे अगला पिछला आगे पीछे सब याद आ जाता है, कनेक्टेड। जैसे कोई मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में हम कोई चीज सर्च में डालते हैं ना, तो उससे रिलेटेड सारी फाइल्स सामने आ जाती है ना, यहां भी ऐसे ही होता है। जैसे ही उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे कहा, उससे रिलेटेड सारी फाइल्स ओपन होनी शुरू हो जाती है। उसने उसके बारे में भी कहा था, अरे वो तो है ही ऐसा, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, सारी बातें 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 खुलती जाती हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके साथ भी हुआ था, उसके साथ भी हुआ था, पता नहीं क्या क्या सोचते जाते हैं, वो राक्षस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आप थकते जाते हो। ऐसा होता है? तो इस राक्षस को, सिचुएशंस को, परिस्थितियों को किसने बढ़ाया? उस व्यक्ति ने नहीं बढ़ाया, मैंने तो एक ही बारी बात कही थी। मल्टीप्लाई किसने किया? आपने किया। तो फिर लेकिन हम क्या कहते हैं, उसके कारण से ना मेरा यह हाल हुआ है। वो ऐसा ना कहता ना तो सब कुछ ठीक था, मैं शांत थी, अच्छी भली थी, है ना, बस उसने ऐसा कहा और ये हो गया, है ना, होता है ऐसे। अब ये सोचो गलती किसकी ज्यादा है, बाहर की चीज को जो आप अंदर ले जाते हो और अंदर ले जाकर उस पर मनन मंथन चिंतन वर्णन सब करते हो, है ना, तो उससे क्या होता है, वो चीज बड़ी हो जाती है। तो कहते पता है आपको क्या हो गया, आप छोड़ इस बात को, मेरी बात सुनो, तो बात को बढ़ा कर देते हैं। सिचुएशन कुछ नहीं है, सर्कमस्टांस कुछ नहीं है, आपके द्वारा क्रिएटेड चीजें हैं। किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं है कि आपके अंदर चली जाए। जब तक आप द्वार नहीं खोलोगे। द्वार आपने खोला है, आपके अंदर की शांति आपने खुद भंग की है, आपने खुद उस चीज का अंदर लेकर गए, चिंतन किया और उसे चिंता बना दिया। तो उस शब्द को, उस बात को बतंगड़ बनाने वाला, उस राई को पहाड़ बनाने वाला व्यक्ति नहीं है, दूसरा व्यक्ति नहीं है, मैं खुद हूं। पहले अपनी जिम्मेवारी लेनी है और उसके बाद जब मुझे रियलाइजेशन हो जाती है, फर्स्ट स्टेप टू चेंज, तो मुझे अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है, अंतर की शक्तियों को और अधिक बढ़ाना है, ताकि अगली बार बाहर की बातें मुझे प्रभावित ना कर सके। प्रभाव यानी पराया भाव, पराया है, आपका नहीं है, स्वभाव आपका भाव है। आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, आप शांत स्वरूप हो, आप सुख स्वरूप हो, आप आनंद स्वरूप हो, ये भूल जाते हो तो भूले होते हैं। तो याद दिलाओ, रोज रोज अपने को स्मृति दिलाओ, मैं कौन। स्वस्थिति जब ऊंची हो जाएगी तो परिस्थिति नीचे हो जाएगी। जैसे पहाड़ है, जब आप नीचे हो तो पहाड़ बहुत ऊंचा है, प्लेन से जाओ तो पहाड़ कितना है, छोटा सा है, नजर भी नहीं आता है। आप ऊंचे हो जाओगे तो पहाड़ भी नजर नहीं आएगा। जब आप अपने आप को नीचा और नीचा बनाते हो, उल्टा क्या होता है, अपने बारे में नहीं, मैं नहीं कर सकता, होता है ऐसे। पहले किसी ने कहा नहीं आप नहीं कर सकते, फिर आपने सोचा कि हाँ मैं भी नहीं कर सकता, 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 नीचे होते जा रहे हो। आपके थॉट, आपकी क्रिएशन आपको ही डिस्ट्रॉय कर रही है, आप खुद अपने डिस्ट्रक्टर बन रहे हो, ये रियलाइज करो। किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको डिस्ट्रॉय कर सके, आपकी ताकत को कम कर सके, केवल आप ही कर सकते हो। क्योंकि हम सब जानते हैं, ये कर्मों का सिद्धांत है कि जो हम करते हैं वो हम भरते हैं, है ना। जो आप बोते हो वही आप काटते हो, ऐसा नहीं है कि वो करे और आप भरो। ये दुनिया का लॉ ही नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि मेरे एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। दूसरे के एक्शन का मुझ पर रिएक्शन नहीं हो सकता अंटिल और अनलेस मैं उसे स्वीकार नहीं कर लेता। तो मेरा एक्शन ये था कि मैंने उसे स्वीकार किया, फिर दूसरा एक्शन था कि मैंने उसके बारे में सोचा, बार बार सोचा, सोचती रह गई, एज ए रिजल्ट मैंने अपने आप को खुद कमजोर बना दिया। अगर आप ये नहीं करते तो ये नहीं होता। समझो, एक बहुत सिंपल बात है, आपसे पूछती हूं, आंसर भी सिंपल ही है। आप जाते हो रास्ते में, कई बारी वो रेड़ी पर सामान बिकता है, कई बार वो खाने की चीजें बिकती हैं, वो कहता ले लो, आप ले लेते हो, लेते हो, उस पर मक्खियां भिनक रही हैं, देख रहे हो, ले लोगे। आपके पास शोरूम में जाते हो, कपड़े वपड़े देखते हो, सिलेक्ट करते हो ना, ये मुझे जचता है, ये नहीं जचता है, ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, गर्मी है तो कॉटन लेना चाहिए, सर्दी है तो वूलन लेना चाहिए, सिलेक्ट करते हो ना। वहां सिलेक्शन प्रोसीजर है हमारा, अपने आप ऑटोमेटिक काम करता है, ये हाइजीनिक है या नहीं हाइजीनिक है, यहां क्यों नहीं काम करता है। उसने मुझे बोला, वो बात आपको अच्छी नहीं लगी, नहीं अच्छी लगी ना, बात तो अच्छी नहीं थी, फिर आपने ली क्यों, है ना, संभाल कर क्यों रखी। और ऐसा नहीं है कि एक दो दिन तक संभाल कर रखते हैं, सालों तक संभाल के रखते हैं, है ना, सालों तक संभाल के रखते हैं, अपनी बातों को ही नहीं दूसरे की बात को भी संभाल के रखते हैं। फिर कहते हैं कि वो जो मन है ना हमारा, वो विचलित हो जाता है सिचुएशंस में, शांत नहीं रहता है, खराब कर दिया आपने अपने मन को, अपनी बुद्धि को खुद खराब कर दिया है। यहां चॉइस क्यों नहीं है मेरी, जब भी आपको कोई कुछ दे शब्दों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, कोई कहता है बद्दुआएं दे दी, किसी ने कुछ कर कह दिया, उसने दी आपने ली क्यों? वो जब लेते हैं ना हम, तो वो अंदर जाता है। और क्यों लेते हैं और कौन लेता है? कौन लेता है? जिसकी इम्यूनिटी डाउन है। जब अंदर की शक्ति, मन की शक्ति कमजोर होती है ना, तो बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, बाहर की बातें अंदर ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। ये भी समझना है हमें, क्योंकि हमें पता तो दिया, क्योंकि दीदी ने कहा था कि बताना कि कोई बोल दे तो उसे अंदर नहीं ले जाना चाहिए, परंतु फिर भी जा रही है ना, क्या करें, आदत हो गई है। अब पता तो चल गया कि नहीं ले जानी चाहिए, बात खराब है, पर आदत ऐसी पड़ गई है, चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि अंदर की इम्यूनिटी डाउन है। आप नहीं चाहते आपको बुखार हो, पर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो क्या करें, बैक्टीरिया वायरस अटैक कर देते हैं। अब इस इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है। ये प्रतिरोधक क्षमता जो है ना हमारे मन की, वह तन की, वो तो सबको पता चल गया है। कोरोना ने सबको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दिया है, परंतु ये मन की जो है ना, इसकी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाना है, उसका क्या तरीका है? वो तरीका हम मेडिटेशन करते हैं। तो चलो हम 2 मिनट के लिए अपने मन की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बढ़ाएं, ठीक है, ताकि क्योटिक सिचुएशन में काम रह सके, है ना। चलो 2 मिनट के लिए बिल्कुल मन को एकाग्र करें, एकदम शांत। बॉडी को हल्का छोड़ दें। एकदम रिलैक्स, पैरों को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें, शरीर के मध्य भाग को एकदम रिलैक्स। सारा ध्यान चेहरे पर और चेहरे में भी, मस्तक के मध्य चमकती हुई शक्ति, ये मैं हूं। शांत हो, शक्ति हो, अब याद करें अपने बचपन को, चले जाएं जीवन में पीछे, जब हम बहुत छोटे थे, कितने स्वीट थे, इतने प्यारे, जो दूसरों को हमें देखकर प्यार आ जाता था, उनके मन की थकावट भी हमें देखकर दूर हो जाती थी। लेकर आए चेहरे पर उसी मुस्कुराहट को, जो निराधार थी, किसी घटना पर आधारित नहीं थी, किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं थी, छोटी सी बात पर ही हम खुश हो जाते थे। कोई झगड़ कर चला भी जाए तो पल भर में उसे माफ कर देते थे। याद करें अपनी उस निश्चल, निष्कपट, सच्ची, अंदर की खुशी, अंदर की शक्ति को। आज भी मैं वही हूं। पर आज मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता हूं, बातों को भूल नहीं पाता हूं। मेरे चेहरे की वो मुस्कुराहट कहीं खो गई है। जीवन के उतराव चढ़ाव ने मेरे अंतर की शक्ति को क्षीण कर दिया है। पर आज अब फिर से मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा को फिर से पा लेना चाहता हूं। महसूस करें अपने बिल्कुल ऊपर सूर्य के समान शक्तिशाली ज्योत, परम शक्ति परमात्मा बिल्कुल मेरे ऊपर, उनसे निकलती शक्तियां मेरे भीतर, उनसे निकलती शांति मेरे भीतर, महसूस करते जाएं, अंदर समाते जाएं, मेरा मन शांत है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हो। फील करें खुद भगवान मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड, सकारात्मक ऊर्जा का सुरक्षा कवच, जिसके भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति आ नहीं सकती। महसूस करें स्वयं को इस शक्तिशाली कवच के अंदर। मेरी शक्तियां सुरक्षित हैं, मेरी शांति सुरक्षित है, कोई भी पराई स्थिति, कोई भी पराया भाव मेरे स्वभाव को, मेरी स्वस्थिति को टच भी नहीं कर सकता। ओम शांति। ये एक्सरसाइज डेली करके देखो। थ्योरेटिकली नहीं बता रही, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में थी और वो भी स्टोरीज बहुत हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में थी, तो अनेक तरह के लोगों के साथ, है ना, समझ रहे हो कैसे लोगों के साथ जो दुनिया में नेगेटिविटी फैलाते हैं, अक्सर हमारा उनसे सामना होता था। पर मेरे जीवन का अनुभव है कि मैं रोज रोज ये प्रोटेक्टिव शील्ड अपने चारों ओर फील करती थी, रोज ये प्रैक्टिस करती थी। आप भी करके देखना, डेली डेली ये प्रैक्टिस करना कि मेरे चारों ओर शक्तियों का ये पुंज मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आप देखोगे वंडरफुल तरीके से ये एनर्जी काम करेगी आपकी लाइफ के अंदर। मैंने एक छोटी सी बच्ची को, मेरी छोटी बहन है, उसकी बिटिया को ये टिप सिखाई, प्रैक्टिकल बात बता रही, बच्चा है जल्दी सीख जाता है, और उसकी स्कूल बस जाती थी। उसने मुझे कहा कि मासी मैं स्कूल बस से नहीं जाऊंगी, पापा रोज छोड़कर आए। क्यों? कहते नहीं, वो मैंने टीवी पर देखा था कि स्कूल बस के ना एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आपका नहीं एक्सीडेंट होगा, और अगर होगा भी तो आप बच जाओगे। कहते ऐसे कैसे? तो मैंने उसको ये जो अभी प्रैक्टिस कराई ना, उसको ये प्रैक्टिस कराई। आप मानोगे, सच में उसकी स्कूल बस का, मेरे कहने पर वो स्कूल बस से तैयार हो गई जाने के लिए, और सच में एक बार उसके स्कूल का बस का एक्सीडेंट हुआ और उसने अपना अनुभव सुनाया। ये मेरा तो बहुत अनुभव है लाइफ के कि कैसे ये प्रोटेक्टिव शील्ड आपकी मदद करती है, परंतु उस बच्ची का भी अनुभव था। उसने कहा कि मासी सबको चोट लगी, मुझे नहीं लगी चोट। मैंने उसे पूछा कि बेटा आपको क्यों नहीं लगी, मैं तो बताकर भूल गई, अभी कितने साल हो जाते हैं ना, मैं तो बताकर भूल गई। उसने कहा मासी मैं ना वो शिव बाबा की जो लाइट है ना, उसको रोज अपने साथ लेके जाती हूँ, वो मेरी प्रोटेक्शन करती है। आप प्रैक्टिकल अपना कर देखो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती। एक होती है बातें, पर एक होती है कि दुनिया में भी ना आजकल नेगेटिविटी बहुत फैल गई है। दो दिन यहां पर तो चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है, परंतु दुनिया के अंदर आप मार्केट से होकर आओ, बाहर के वाइब्रेशन इतने नेगेटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं, आप होकर आते हो आपको पता नहीं क्यों थकावट होने लगती है। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। कई बार आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, बस कहीं से होकर आ जाते हो और आपकी ऊर्जा डाउन हो जाती है। क्यों होता है? कहते ना हेलमेट पहन के रखो, तो प्रोटेक्टिव शील्ड जो होती है ना, ये पहन कर रखना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में जैसे वो दिखाते टीवी में, तो ना बस ऐसे ही दिखा देते हैं कि आपके चारों ओर इम्यूनिटी सुरक्षित करे वायरस और बैक्टीरिया से, पर प्रैक्टिकली आप अपने चारों ओर फील करो गॉड का ये सुरक्षा कवच। हर नेगेटिव स्थिति से आपके अंदर की स्थिति को प्रोटेक्ट करेगा, तो इसका बार बार आप लाइफ में अभ्यास करो। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे अभ्यास हैं, जिसमें हम एक स्पेशली अभ्यास कहते हैं कि खुद को साक्षी दृष्टा होकर देखो। देखो ये भी एक प्रैक्टिस है। ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हैं। साक्षी दृष्टा यानी देखो अपनी लाइफ के अंदर कौन सी चीजें मुझे प्रभावित कर रही हैं, कहां कहां मेरी रगे जुटी हुई हैं। हम बचपन में ना, एक आपने भी देखी होगी, कई फिल्में बनती थी और उन फिल्म के अंदर दिखाते थे कि राजकुमार की जान तोते में थी, ऐसे था ना, देखिए किसी ने स्टोरी भी सुनी होगी। अब आप चेक करो कितने तोतों में आपकी जान है, चेक किया है? अपनी छोड़ो, किसी को कुछ होता है आपको भी कुछ हो जाता है ना। बच्चों को कुछ कहे और मम्मी को कुछ ना हो, ऐसा होता है ना। आपने कुछ कहा, सामने वाले ने आपकी बात को कट कर दिया। वो स्थूल बातें, ये मेरा बच्चा, ये मेरे कपड़े, ये मेरी अलमारी, मेरा घर, उनको कुछ कह दिया तो मेरी स्थिति खराब हो गई। पर सूक्ष्म बात है, आपकी बात को मैंने कह दिया कि नहीं आप तो बेकार बात है, आपकी बात रहने दो, इसको छोड़ो, आप तो सुनाओ, कितना अच्छा लगता है आपको? बुरा लगता है ना। आपकी जो शब्द है ना, आपकी जो भावनाएं, वो आपकी क्रिएशन है। जैसे बच्चे आपकी क्रिएशन है, उनको मैं थप्पड़ मारूंगी तो आपको दर्द होगा, जैसे आपकी ये जो क्रिएशन है इसको जब मैं कट करूंगी ना तो आपको बहुत दर्द होगा। ऐसे कई दर्द हम सारे दिन में कईयों को देते हैं, देते हैं कि नहीं देते, जाने अनजाने देते हैं, दूसरे की क्रिएशन को कट करते हैं, करते हैं कि नहीं। और उसके कारण क्या होता है, मेरी अंदर की स्थिति विचलित रहती है। ये जो मन के भाव है ना हमारी, ये हमारी क्रिएशन है। किसी और की भावनाओं की भी कदर करना और अपनी भावनाओं को भी शुद्ध और स्वच्छ रखना, इसका भी बहुत गहरा अभ्यास करने की जरूरत है। तो क्योंकि समय की सीमा है, वैसे तो कल मॉर्निंग में भी आप सभी के साथ मेरा सेशन है, वो टॉपिक अलग है, परंतु फिर भी कल मॉर्निंग का सेशन आप जरूर अटेंड करना, क्योंकि एक नए ढंग से परमात्मा कौन है, क्या कर सकता है, कैसे करता है, वो विधि जरूर सीखना। क्योंकि अगर आपने वो सीख लिया ना, तो सच बताते हूं परमात्मा के साथ लिंक जोड़ना, आप सोचो जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ आपका घरू नाता हो जाए, सारे काम कितने सहज हो जाते हैं ना। सारे विश्व के क्रिएटर के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, तो आप सोचो आपके कैसे काम बनने लग जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नहीं सोचो मैं माता हूं, मैं घर में काम करने वाली हूं, मैं तो छोटा सा खिलाड़ी हूं, मैं तो यहां रहता, छोड़ो उन बातों को। आपका लेवल कितना बड़ा है ये आप भी नहीं जानते। जैसे आज बोला ना, स्मृति शक्ति है, याद करो आप कौन हो। ये स्मृति बार बार रिपीट करने से मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं, आपके अंदर की स्थिति ऊंची कर देती है और परिस्थिति को नीचा कर देती है। तो कैसे अपनी स्थिति को सर्वोच्च बना लो, टॉप ऑफ द टॉप बना लो, कैसे वो टॉप मोस्ट रिलेशन क्रिएट करो, वो टॉप कौन है और कैसा है उसको जानना, पहचानना और उसके साथ संबंध बनाकर कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर देना। क्योंकि गॉड छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बिगड़ी को बनाने वाला है, दुख हरता सुख करता है, पतित। ये कंट्रास्ट, हम तो घर की अपने जीवन की छोटी छोटी बातें भी नहीं बदल पाते। बदल पाते हैं? नहीं बदल पाते, चाहते हैं ये बदल जाए, मैं अपनी आदत बदल लूं, है ना, ये जो है वही नहीं बदल पाते। और भगवान तो एकदम मनुज से देवता बना देता है, इतना बड़ा चेंज कर सकता है वो। परिवर्तन जो आप नहीं कर सकते वो आपका पिता कर सकता है, उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कल का सेशन जरूर मिस मत करिएगा, मॉर्निंग सेशन, तो आपको और भी कई चीजें बताएंगे। समय की सीमा है,